वमल लम यस्तति मिन कुम तौलन, और जो कोई ना इस्तात रखता हो तुम में से, तौल जो लफ्ज है ना, इस्तात कुदरत, जिसकी रेंज में ना ये हो, ताकत ना हो, कोई रिश्ता नहीं उसको देता, किसी लड़की का बाप उसको रिश्ता देता ही नहीं है, किस चीज की ताकत ना हो। अय्यन के हल मुखसनातिल मुमिनात, यहां गौर से देखिएगा मुखसना के लफ्ज का तर्जुमा क्या करूंगी, क्योंकि आपको ऊपर चार मानी बताए ना, शादी, आजादी और पाक दामनी, और जो लौंडी के मुकाबले में, यहां देखिए ये के वो निकाह करे आजाद औरत मोमिनों की, यानी शरीफ घर की, पढ़े लिखे घर की, अच्छे खानदान की, जिसको उर्दू में आप ये कह लें खानदानी औरत से निकाह करने की कुदरत नहीं रखता, यानी एक मर्द है उसके पास कुछ है ही नहीं है, ना माल है, ना घर है, ना उसके पास कोई इतना लंबा चौड़ा स्टेटस है, ना उसका पेपर वर्क है कि किसी लड़की का बाप उसको अपनी बेटी देता ही नहीं है, समझ आई? तो अब क्या करेगा? अब ये एक थर्ड ऑप्शन है, पहले वाली सारी थी जिनसे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये जो बीच में जिक्र चल रहा है और इसी का जिक्र भी आगे भी आएगा, तो ये जिक्र है किसका, जिनसे कर सकते हो। अब ये बीच का रास्ता है कि आजाद औरत से कोई करने नहीं दे रहा उसको, बड़े घर की बेटी नहीं ला सकता, मिसाल दे देती हूँ, तो अब क्या करे, फमिम मा मलकत ईमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तो वो तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो। यहां नोट कीजिएगा, बेटी कोई नहीं अपनी देता किसी मर्द को, तो शादी तो करनी है, तो फिर इस सूरत में क्या करे, जिना कर ले, नहीं जो हो रही शादी, शोहर नहीं है पास तो जिना कर ले, बीवी पास नहीं है तो जिना कर ले, नहीं फिर किसी की लौंडी से जाकर निकाह करे। जो शुरू में आपको बताया ना कि जब लौंडियां मिलती थी तो जरूरी तो नहीं था कि वो उनके साथ खुद भी है इस जौजियत वाला मामला रखे, तो फिर किसी को कहे कि आप अपनी लौंडी से मेरी शादी कर दें। अब ये वो इसकी लौंडी नहीं होगी, समझिएगा बात गौर से, लौंडी वो उसकी होगी लेकिन इसकी बीवी होगी, बस ये कह ले, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कि बड़े घर की बेटी नहीं मिलती तो किसी गरीब छाबड़ी वाले की बेटी से शादी कर ले, ये मुराद है। बट इस सूरत में भी आजाद औरत नहीं, किसी की लौंडी के साथ, लेकिन शर्त यह कि फिर मोमिन होगी। ये जुमला लिखें, अपनी लौंडी काफिर हो सकती है पर कोई किसी की लौंडी से निकाह करना चाहता है तो उसके लिए ईमान वाला होना शर्त है। बात वाजे, शरीफ सादियां थी, क्योंकि क्योंकि जो आम आजाद औरतें होती हैं उनका हक महर ज्यादा होता था, उसके माँ बाप की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, वो बहुत कुछ देखते हैं, तो लिहाजा जिना से बचते हुए या जिना से बचाते हुए इस्लाम ने ये दरवाजा खोल दिया कि फिर किसी की लौंडी से कर लो। और वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, यानी ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन मोमिन है और कौन नहीं है। मुराद ये है कि जो भी कानूनी एतबार से मुसलमान है दुनिया में वो मोमिन समझा जाएगा। अच्छा, कराहत आती है कुछ लोगों को सोच के, हैं किसी की लौंडी से मैं निकाह करूं, तो अल्लाह ताला करे नहीं, बाद को मिम बात, तुम सब आदम से हो, काला गोरा अरबी अजमी कोई फर्क नहीं है, तुम सब एक दूसरे से ही हो, तुम कर लो, यानी वही बात है कि अच्छा पढ़ी लिखी कोई बेगम साहिबा से शादी नहीं हो रही तो किसी गरीब छाबड़ी वाले भिखारी सड़क पे भीख मांगने वाले की बेटी से ही कर लो, हकीर ना समझो उसको, इसलिए कि इंसान होने के नाते तो तुम सब बराबर हो। लेकिन क्या किसी की लौंडी के साथ ऐसे ही अपनी मर्जी से शादी की जा सकती है, जिसको कोर्ट मैरिज कह लें, किसी को भगा के ले जाए? नहीं, फन के हुन नबीजनी अहली हिन्ना, ये है अब चौथी शर्त, पिछली आयत में गुजरी तीन, चौथी शर्त इधर आ गई है, मैं भी सारी दोबारा बोलूंगी, फन के हु बेइज्नी अहली हिन्ना, इनसे निकाह करो इनके मालिकों की इजाजत से। नोट करिएगा, किसी की लौंडी से निकाह करते हुए अगर मालिक की इजाजत है तो एक आजाद औरत से शादी करते हुए उसके बाप की जरूरत है, तो ये निकाह का अगला एलिमेंट है और वो क्या है, वली की मौजूदगी, उसकी रजामंदी। बात समझ गए? बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वो उसकी मलकियत है, बाप तो बेटी है उसकी, लेकिन मालिक ने तो उसको हो सकता है खरीदा हो पैसों से, तो यहां से आपको निकाह में वली की जरूरत महसूस होती है। किसी लौंडी का मालिक उससे जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है, लेकिन जब एक शख्स उसकी इजाजत से इसकी लौंडी से निकाह कर ले तो याद रखिए फिर उस लौंडी से मालिक का ताल्लुक टूट जाएगा, फिर वो उससे अपना जिस्मानी ताल्लुक नहीं रख सकता। अब वो लौंडी से एतबार से इसके काम में नहीं आ सकती, वो एक दूसरे मुसलमान की मनकूहा बन जाएगी। इसलिए यहाँ बिजनी अहली हिन्ना की शर्त लगाई गई है। याद रखिए कि उस वक्त मुआशरे में बिलफेल ये सूरतें मौजूद थी, ये नहीं कहा गया कि ऐसा करो, ये हो रहा था ऑलरेडी। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल दूं, फीस माना अगर आपका ये नॉर्वे मुसलमान हो जाए, कुछ लड़के लड़कियां कई साल से रह रहे हैं लिविंग टुगेदर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो कहा जाएगा चलो इनकी आपस में अब शादियां कर दो, रह तो ये पहले ही रहे थे, तब इनकी ऐसी शादियां कर दो। यानी एक सोसाइटी में एक बुराई मौजूद थी ऑलरेडी, तो उसकी तत्हीर क्या है कि फिर उसको लीगलाइज कर दो। ठीक है, तो यहां ये सूरतें पैदा कर दी गई और गुलाम और लौंडियों का मामला उस वक्त के बैनुल अक्वामी हालात और जो जंगी कैदियों के मसले थे, ये एक हल के तौर पे इस्लाम बातें पेश कर रहा है। ये नहीं कि इस्लाम इन चीजों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और असल में ये सब कुछ इस्लाह है कि जिसके बाद एक वक्त ऐसा अभी आ गया कि ये सब कुछ खत्म हो गया। खैर, इसके बाद देखिए आगे, वह आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना बिल मारूफ, है वो किसी की लौंडी लेकिन हक मेहर इनको भी देना पड़ेगा मारूफ तरीके से। आम औरत से हक मेहर कम हो सकता है, तभी तो इससे शादी की ना। ये ऐसी है कि कोई किसी ब्रांड की चीज नहीं खरीद सकता मॉल में जाकर, तो जरा सस्ती चीज खरीद ले, किसी छोटी दुकान से ले ले, बात समझ गए ना, काम तो उसका भी चल जाएगा ना, ये मुराद है। इधर भी वही शर्त है, मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, इनको हिसारे निकाह में लाकर, ना के आजाद शहवत रानियां करने वाली हों। यानी लौंडी से भी निकाह का ताल्लुक घर बसाने के लिए होगा, जिस्मानी जस जरूरत को पूरा करने की नीयत होगा। ये नहीं है कि शादी भी कर ले इनसे और बाद में वो इधर उधर जाकर दूसरे मर्दों से भी ताल्लुक कायम रखे। इसीलिए फरमा दिया वला मुत्तखिजाति अखदान, और ना ही चोरी छुपे आशनाइयां करें। कितना बुरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ, किसी की लौंडी से किसी का निकाह हो तो खुल्लम खुल्ला हो, सबको पता हो फुलां की लौंडी या फुलां के निकाह में है। जैसे अब हजरत सुमैया से हजरत यासिर ने निकाह किया था, कौन थी हजरत सुमैया, अबू जाहल के चचा की लौंडी थी, जो एक शरीफ इंसान था, यानी काफिर था लेकिन शरीफ इंसान था। जब यासिर यमन से मक्का में आबाद हुए तो उन्होंने अबू जाहल के चचा से इजाजत ली कि मैं अकेला हूं तो क्या आपकी लौंडी सुमैया से मेरी शादी हो सकती है। उन्होंने कहा कर देते हैं, शादी हुई, फिर उनके बतन से अम्मार पैदा हुए थे। और ये तीन लोगों का एक कुंबा था, यासिर, अम्मार बिन यासिर और अम्मार की माँ सुमैया। और फिर अबू जाहल का चचा तो अच्छा था, वो फौत हुआ तो अबू जाहल ने उनको पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। यानी ये तीनों फिर अबू जाहल के कब्जे में आ गए और बदतरीन किस्म की सजाएं दी इनको इस्लाम कबूल करने की वजह से। तो यहां ये सूरत हाल दिखाई गई। अब क्या हुआ, अब एक लौंडी से निकाह हो गया, अभी कच्चा कच्चा समझे, मैं सारा दोहराऊंगी इसलिए फिक्र नहीं करें। पहली सूरत क्या थी, आजाद औरतों से निकाह कर लो, उसकी शरायत हो गई। फिर उसके बाद ये कि आजाद औरत से होता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं देता, तो किसी की लौंडी से शादी करो। लौंडी से शादी करने में भी वही सूरत है कि हक मेहर होगा और निकाह घर बसाने के लिए होगा और सिर्फ शहवत रानी नहीं होगी। अब यहां एक क्वेश्चन है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, छुपता हुआ सवाल है, किसी की बीवी अगर जिना करे, किसी की बीवी जिना करे, एक है आजाद औरत किसी की बेटी या दूसरा है कि किसी की लौंडी से निकाह किया, तो अब इनकी सजा क्या होगी, बात समझ रहे हैं। और याद रखिए कि सारी आयतें, वो कहना चाहिए ट्रांजिशन हो रहा है या कि इनकलाब आ रहा है, जो आखिरी दौर में इस्लाम में कवानीन आ गए थे कि रजम की सजा है, जैसे कल भी आपको बताया था ना कि ये सारी इन बिटवीन की जो शिकें हैं। तो अब यहां कहा गया फैजा उहसिन, फिर जब ये निकाह में आ गई, फैन अतई न भी फाहिशत है, फिर ये फहाशी करें। याद रखिए जुमला लिखिएगा, उस दौर में फहाशी, जिसम फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन या तवाइफ जिसको आज के दौर में कहते हैं, ये काम सिर्फ लौंडियां ही करती थी। आजाद शरीफ घरों की औरतें, उनसे ना इस चीज की तवक्को की जा सकती थी और ना ऐसा कभी होता था। इसलिए अब यहां बताया गया कि मिसाल है कि किसी की लौंडी से शादी हो गई, लेकिन आदतन, और वो कहते हैं ना छोटे जहन की औरत, या जैसे कमी कमीन लोग बोल देते हैं, आदत पड़ी होती है, चोर चोरी से जाए, हैरा फेरी से ना जाए, कहते हैं ना, इस सूरत में अब अगर वो लौंडी शादी तो कर चुकी है एक मर्द से जात से, लेकिन अपने शौहर के अलावा किसी और से कोई ताल्लुक करे तो क्या होगा? फालेहिन्ना निस्फ मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो इसकी आधी सजा होगी आजाद औरत की निस्बत। आजाद औरत की क्या सजा है जी? 100 कोड़े। कब? जब वो कमारी हो। दूसरी सूरत में रजम, तो इसको क्या किया जाएगा? क्योंकि ये तो शादीशुदा ही है, अब आधा रजम तो नहीं किया जाएगा ना, तो 50 कोड़े ही है। लौंडी को रजम नहीं किया जा सकता, ये मुराद है। लौंडियां अगर निकाह में आने के बाद बदचलनी करें, बदकारी करें, तो जो आजाद औरतों की सजा है उसकी आधी सजा दी जाएगी। याद रखिए, जिस वक्त ये आयतें उतर रही थी ना, उस वक्त अभी 100 कोड़ों की सजा का हुक्म भी नहीं आया था और रजम का भी हुक्म नहीं आया था। तो वो जो पीछे बात हमने पढ़ी है ना, आयत क्या थी? 14 थी ना, फआज़ूहुमा, तो ईजा दो उनको, उनको तकलीफ दो, मारो, डांटो, दबको, उसके मुताबिक यानी आजाद औरत से कम सजा दी जाएगी लौंडी को, ठीक है? क्योंकि एक आजाद औरत को तहफ्फुज़ हासिल होता है, उसके बीच में मामला ज्यादा क्लियर होता है, लौंडी बेचारी गरीब होती है और उसके हालात बुरे हैं, इसलिए। अब यहां तक बात वाजे हुई, फिर पीछे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे थे जिनसे निकाह हलाल नहीं है, हराम है, फिर काद वाहिल्ला लकुमा वरा जालिकुम, इसके अलावा हर औरत से जायज है, उसकी हमने चीजें पढ़ ली, तब तक में हिजाबो कबूल आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद हक महर की बात आ गई, तीसरी शर्त आ गई थी घर बसाने का इरादा हो। आप पूछ रही थी ना, तो पहले में ये तीन थी, ठीक है? हक महर, मुद्दत का तायुन नहीं होगा, घर बसाने की बुरी इरादा होगा, इजाबो कबूल तलब करेगा मर्द, लड़की के बाप से रिश्ता मांगेगा, फिर हक महर होगा, फिर तीसरी चीज है कि घर बसाना, टाइम मैरिज नहीं होगी, और चौथी शर्त आपने दूसरी आयत में पढ़ ली कि वली की मौजूदगी, ठीक है? अच्छा, अब यहां सब हो गया, फिर इसमें हमने पढ़ा कि जिसको आजाद औरत नहीं मिलती तो वो किसी की लौंडी से कर दे। लौंडी से करने में भी शर्तें वही हैं सारी, लेकिन थोड़ी सी सहूलत है, कम पैसों पे मामला चलेगा। फिर हमने आखिर में पढ़ा अभी कि अगर किसी की लौंडी बुराई करे, जिना करे, बुराई करे, तो क्या करे? उस लौंडी को आजाद औरत से आधी सजा मिलेगी। ये सब कुछ कहकर अब आप जरा गौर से सुनिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि ये जालिका किसके लिए है। जालिक लिमन खशियल आना था मिनकुम, ये इजाजत तुम में से उनके लिए है जिनको गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो। ये क्या है भाई, ये जालिका क्या है? इधर हाथ खड़ा करके बताएं कि जालिका ये क्या, ये इजाजत किस चीज की इजाजत जी? आप बताइए, ये जो ऊपर सजा की बात हुई आखिर में, देखिए देखने में एकदम वही लगता है जो आपने बोला, ये सजा नहीं, लौंडी से निकाह करना, किसी की लौंडी से निकाह करना पसंदीदा नहीं है। ये सिर्फ उस सूरत में एक रुख्सत है कि जब एक मर्द को लग रहा है कि अगर मेरी शादी ना हुई तो मैं बदकारी में पड़ जाऊंगा, यानी पसंदीदा नहीं है। आपको पता है कि निकाह का एक बुनियादी उज कफ है, कफ लोग पढ़ते हैं उसको, हालांकि वाह बाद में खड़ा होता है कफ। कफ क्या होता है? बराबरी, जहनी तौर पे बराबर, कहले पर बराबर। जिस हद तक रिश्ता करते वक्त लड़के और लड़की में हर एंगल से मुमासलत हो, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं घर के बसने के। अब एक आजाद है, एक लौंडी है। देखिए ना, नबी सल्लम की फूफीजाद जो बहन थी ज़ैनब, उनका निकाह जैद से हुआ जो आजाद थे, लेकिन पीछे से गुलामी का एक नाम लगा हुआ था, सिर्फ इस वजह से वो उनको कबूल ही नहीं कर सकी। देखिए इसको ऐसे समझे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूं, ये है नहीं कि वो वाकई लोग वो हल्के होंगे या क्या होंगे। किसी की शादी उसके ड्राइवर के बेटे से हो जाए, एक बड़े घर की बेटी है, बेगम साहब हैं, सेठ साहब हैं, छोटी सी बच्ची है, उसने पैदा होते ही अपने घर में एक बाबे को देखा, फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, पीछे क्वार्टर्स में था, नंगे पांव फिरता भी था, होते होते वो जवान हो गया बच्चा, क्या जहन में आएगा कि हमारे ड्राइवर का बेटा है? कल बड़े होकर अगर उसकी शादी उससे कर दी जाए, तो इंसान होने के नाते तो ड्राइवर का बेटा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, लेकिन वो लड़की जहनी तौर पर हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे, ये बात है। किसी मर्द ने अगर किसी की लौंडी से निकाह किया और जहनी तौर पे हर वक्त उसको टॉर्चर ही करता रहा कि तू है तो पीछे से लौंडी है ना, जैसे कई जाहिल वैसे ही बीवियों को गालियां देते हैं, उसको हकीर समझते हैं, तो पांव की जूती है, तुझे देता कोई नहीं था। याद रखिए कि किसी की बेटी ले आना ये छोटी बात नहीं है। अगर आज आपने किसी की बेटी जो आपकी बीवी अब बन गई है उसकी कदर ना की, तो याद रखिए ऐसे 20 साल बाद अल्लाह आपकी बेटी की सूरत में आपसे हिसाब चुकवाएगा। तो बड़े सोच के करने के मामले होते हैं। तो कहा कि ये इवॉइड करो, जालिका यानी ये निकाह, यहाँ जालिका से मुराद किसी की लौंडी से निकाह, ये नहीं करना चाहिए। कोई कब करे, लिमन खशी जलाना था मिनकुम, जो के तुम में से किसी गुना में जाने का खतरा। अब ये लफ्ज अनाता को देखिए, इसको कई लोग लानत पड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। कई लोगों को यकीन करें कच्ची पक्की पढ़ाते हुए देखा है, लफ्ज देखने में तो लानत ही लग रहा है। आप लाम की मद को खत्म करें, सॉरी जज़्म उतार दें, तो हमें अल तो नहीं लगेगा। ये हम कहेंगे अलीफ ऐसे एक्स्ट्रा है और लफ्ज लिखा हुआ मन खाशिया लानता। बात समझ रहे, ये लानता नहीं है, ये आनत है। और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये लफ्ज पीछे कहीं पड़ा जी? माँ अनित तुम, शाबाश। सूरत आल इमरान में हमने क्या पढ़ा था कि गैर मुस्लिमों के तस्करे में अल्लाह ताला ने फरमाया था, इनको हर वो चीज अच्छी लगती है जो तुमको मुश्किल में डाले। तो वहां इसी की फॉर्म थी अनित तुम। तो आनता आइन नून ता, ऐसा टीला जिसपे चढ़ना मुश्किल हो, मुशक्कत मुराद है, तोड़ फोड़ तकलीफ, सहूलत और आराम नहीं होता अनाता में, कमजोरी शिकस्तगी। अनितल अजम कहते हैं हड्डी कमजोर होकर टूट ही गई, अनितत यदहु उसका हाथ टूट गया, अन्नतहु उसने उसे मुश्किल में डाला या ऐसा काम उसके जिम्मे लगाया जिसका करना उसके लिए मुश्किल था। ठीक है, तो अनाता में ऐसा वजन किसी पे डाल देना जिसको कोई बर्दाश्त ना करे, ये मुराद है। और फिर क्या करो भाई, अब लौंडी से भी निकाह नहीं करना, तो कावान तस्वीरो, अगर तुम सब्र कर लो, खैरुल लकुम, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये किस सब्र की बात है, जिस्मानी तकाजों के पूरा ना होने पे सब्र। और नबी सल्लम ने फरमाया कि या माशरश शबाब, ए जवानों के गिरो, रोजा रखा करो, क्योंकि रोजा निगाह को झुका देता है, शहवत को दबा देता है। तो हक में बेहतर है, यानी उस दौर में माशरे में बांदियां लौंडियां कनीजें आम थी, बुलंद किरदार नहीं होती थी, छेड़खानियां करती थी, छिछोरपन करती थी, गाती बजाती थी। तो कहा बेहतर है कि तुम ऐसी छिछोरी औरतों से निकाह ना करो। और वल्लाहु गफूरु रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तवील आयत थी ना, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हुई होगी। किसको पूरी बात समझ आ गई है खुलासे के तौर पे? अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आप ऐसी आयतें जब पढ़े ना, तो उनके साथ रा करें, मैंने बीच में कोई दूसरी बात छेड़ी नहीं है, सिर्फ आपके साथ आयत के लफ्जों को खोला है। क्योंकि छोटी आयतें जो होती है ना, वो थोड़ी पढ़े फिर उसके अंदर डिटेल्स हैं, हदीसें हैं, आयतें हैं, फिर उसको आगे लेते थे ना, वो चल जाती है। लेकिन जो तवील आयत होती है उसका पढ़ने का हमेशा यही तरीका होता है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करें। बड़े बड़े बाइट्स लेंगे ना, बड़े लुक में लेंगे, तो वो फिर गले में फंस जाते हैं। अब इसमें से कुछ मजीद अहकाम जो हमें शुरू से अव्वल मुहसनात से, दोबारा मेरे साथ चलिए, खोलें अपने साथ, तो हम इसको मजीद कुछ चीज़ों की सूरत में देखते हैं। ये जो आयत थी नवल मुहसनात वाली, आयत 25:4, इसकी शान नजुल सुनिएगा। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने हुनैन के दिन, हुनैन क्या थी, जंग थी, कब हुई थी पता, गजवे तबूक से पहले जी, हुनैन के दिन एक लश्कर को औतास की तरफ भेजा, ये एक जगह का नाम है, इनकी दुश्मन से मुठभेड़ हुई और इनको कत्ल किया, इन पर सहाबा ने गलबा हासिल किया और उन्होंने काफिरों को कैदी बनाया। अस्हाबे रसूल रजी अल्लाह अन्हों में से बास लोगों ने इनसे सोहबत करने को अच्छा ना समझा, यानी प्रैक्टिकली ये लौंडियों का जंग में आना, ये गजवाए हुनैन में मुसलमानों को मिला, ये वाकई ऐसा मामला हुआ। तब वो जो दूसरों की बीवियां इनके पास आईं, तो सोचा कि ये तो हमारे लिए जायज नहीं, क्योंकि उनके मुशरिक शोहर मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने इस बारे में ये आयत नाजिल कर दी, वल मुहसनात मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, यानी शोहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं, मगर वो लौंडियां अगर बन के तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे लिए हलाल है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, 3608 नंबर की। ठीक है, तो फिर यहाँ मुहसनात से क्या मतलब है, शादीशुदा आजाद औरतें, पाक दामन पर मुसलमान, यानी मुहसना का लफ्ज चार मानों में दोबारा लिख ले, शादी, आजादी, पाक दामनी और मुसलमान आसान इस्लाम के लिए भी आया ना मुसलमान औरत होगी। मुहसिनात के लिए शादीशुदा औरत से निकाह नहीं हो सकता सिवाय जंग में आने की सूरत में। ये बात मैंने पहले काफी क्लियरली बता दी आपको। थोड़ा सा लौंडियों के साथ ताल्लुक रखने के बारे में हदीस सुनिएगा। हजरत अबू मूसा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स के पास कोई लौंडी हो और वो इसकी अच्छी परवरिश करे और इसके साथ अच्छा मामला करे, फिर इसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो इसको दोहरा सवाब मिलेगा। ये बुखारी की रिवायत है 2544 नंबर की। तो क्या पता चला कि लौंडी को हमेशा आप लौंडी ना रखें, बेटियों की तरह, घर के बच्चों की तरह, घर के बच्चों और की तरह उसकी अच्छी तरबियत करें, पढ़ाएं लिखाएं, फिर आज़ाद कर दें। तो जब आज़ाद हो गई तो वो एक आम औरत की तरह होगी और एक आम शहरी होगी। अब यहाँ इसका तरीक़ाकार क्या होगा, सवाल पैदा होता है। लिखिए, काफिर औरतें जंग में कैदी बनकर आईं, मुस्लिम माशरे में उनको कैसे रखा जाए। अब यहाँ चंद सवाल जहनों में उभरते हैं कि इन औरतों को क्या किया जाए। अब आप सोचिए, देखिए हम तो बड़े पीसफुल माहौल में बैठ के बातें कर रहे हैं ना, आज की जंगों को भी आप उस पर क्यास नहीं कर सकते। आज तो दूर बैठ के मिसाइल फेंकते हैं ना, पता नहीं चलता किस पे क्या गिरेगा। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, खुले मैदानों में दोनों फरीकैन निकलते थे। उस वक्त कोई चाहता था ना कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो वो काफिर अपने मुल्क में बैठे रहते थे। जब बैठे रहते थे तो मुसलमानों की उनसे कोई लड़ाई नहीं होती थी। जैसे अब बदर के लिए 1000 लोग अबू जाहल के साथ आए थे तो अपनी खुशी से आए थे ना, तो मक्का में और भी बहुत सारे थे, उनके साथ मुसलमानों की कोई जंग नहीं है। निकल के आता ही वो था जो इस्लाम के खिलाफ सीना जिसका जल रहा होता था। जो औरतें मैदान जंग में आ गई तो क्या वो बहुत प्यारी खवातीन होंगी, क्या वो इस्लाम की मोहब्बत में आई होंगी? वो तो अपने फौजियों को तीर पकड़ाने, तलवारें पकड़ाने, उनके लिए कौमी नगमे गाने, उनके जज्बात को भड़काने आती थी, तो वो तो इस्लाम की नफरत में भरी होती थी। अब सोचिए जंग हुई, काफिर हार गए, तो क्या करें इन औरतों को? अब वो मर्द जो कैदी बन गए तो इन औरतों को छोड़ दिया जाए? अब जब वो औरतें रहीं तो अब उनको खाना भी है, पीना भी है। ये सारा सेटअप जो पढ़ रहे हैं ना, असल में ये उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने वाला है। देखिए आज एक छोटा सा लफ्ज आप सब बोलते हैं और समझते होंगे इधर भी, असाइलम। कौन होता है? किसी मुल्क से रिफ्यूजीज बन के जब लोग आए तो किसी मुल्क ने उनको पनाह दी, ये असाइलम का पुराना तरीका था। आज असाइलम पे पैसे मिल जाएंगे, घर दे देंगे, छतें दे देंगे। अब ये सब कुछ दिया, अब 20 फौजी हैं उधर, समझिए कि 20 औरतें आ गईं, गरीब बस्तियां होती थी। अब 20 औरतों को दिन में 2-3 वक्त खिलाना, रखना, कपड़े, सर्दी गर्मी, कौन करेगा? हुकूमत पे बोझ कैसे पड़े? इस्लाम ने हमेशा चीज़ों को ना बांट दिया, चलो एक एक खर्चा तुम चलाओ। ये जो हमारे जहनों में एकदम हॉलीवुड की फिल्मी अदाकारों जैसी लौंडियों की तस्वीरात आ जाते हैं और नचकती फुतकती और बड़ी हसीनों जमील होंगी, वो ऐसी थोड़ी होती थी, समझ आ रही है? तो वो एक किस्म की उनकी सर्वाइवल थी। अच्छा, जिसको लीडर ने पकड़ाना है ना कि अच्छा ये तुम्हारी, इसकी कस्टडी तुम पे, इसकी वो ही थी, आपस में बदल नहीं सकते थे, बिल्कुल जैसे कोई किसी की बीवी को बदल नहीं सकता। अब खाने का इंतजाम कर दिया, अब आप मुझे बताइए अब वो घर में उनको कैसे रखे, गैर महरम है। लोग कहते हैं अच्छा क्या ये ना हो जाता कि जो ऐसी औरतें आती उनको कहा जाता है इन फौजियों की बहनें हैं, सगी बहनें बना दी जाती। सोचे, क्वेश्चन है जेन में, तो क्या बहन से उसको खाना पानी तो होगा लेकिन उस औरत की जो जिस्मानी जरूरियत है वो नहीं पूरी करनी, समझ आ रही है ना? तो उन औरतों की सेक्शुअल नीड को पूरा करने के लिए ये काम रखा गया, एक चीज। दूसरी भी चीज देखिए, अगर उनको बीवियां ही बना दिया जाता कि बस आओ पकड़ो मौलवी साहब, इनका भी निकाह पढ़ो, इसका भी पढ़ो, उसका भी पढ़ो, कट्ठे निकाह हो जाते सबके, तो ये किसके साथ जुल्म होता? एक औरत जो कुफर में है और इस्लाम दुश्मनी में आई मैदान जंग में, एक फौजी के साथ उसकी शादी की जा रही है और उस फौजी के घर में एक पाक दामन बीवी पहले से बैठी है, ये उस पर जुल्म होता। इस्लाम हर एक को उसके लेवल पे रखता है। ये बात की है तो मुझे एक बड़ी ही भोंडी सी खबर याद आ गई, और अगर वो सच है तो मेरा ले उम्मत मुस्लिमा का जवाल है। पूरी वीडियो थी और जो उसकी डॉक्यूमेंट्री थी, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन खबर कुछ इस किस्म से थी कि इंडिया के एक गांव में निकाहों पे जोर हो गया। क्या निकाह हुए? एक शख्स फौत हुआ, वो बरेलवी मसलक से था, किसी वजह से हालात में कुछ ऐसा हो कि उसका नमाज़े जनाजा एक देवबंदी आलिम ने आके पढ़ा दी। जब उसके पीछे लोगों ने नमाज पढ़ ली तो कुछ लोग बरेलवी आलिम के पास गए कि क्या उसकी नमाज़े जनाजा हो गई है, क्योंकि वो एक बरेलवी की वजह देवबंदी ने पढ़ा दी। फतवा उस मौलवी साहब खुद भी बोल रहे हैं, उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि उसकी नमाज़े जनाजा हुई कि ना हुई, ये तो एक अलग इशू है, यानी कि नहीं हुई। जिन्होंने भी उसके पीछे नमाज़े जनाजा पढ़ी है वो सारे इस्लाम से निकल गए। क्यों? उनके जुमले आप चाहे मैं भी सुना देती हूँ कि काफिराना सोच रखने वाले शख्स के पीछे नमाज पढ़ के उनका अपना इस्लाम चला गया, यानी बरेलवी उलमा कह रहे हैं कि देवबंदी आलिम काफिर है, और चूंकि उनका निकाह इस्लाम टूट गया तो निकाह भी टूट गया। कहते हैं पूरे गांव में कोहराम मच गया, और अब क्या करें, उन्होंने कहा कि पहले इन सबको दोबारा कलमे पढ़ाओ जिन्होंने उसके पीछे नमाज पढ़ी है, फिर इनकी शादियां दोबारा कराओ। और लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 200 के करीब सैकड़ों तादाद में इस गांव में इस दिनों में पहले कलमे पढ़े और सब के अब दोबारा मौलवी साहब निकाह करा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक देवबंदी आलम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ ली है। अगर ये खबर सच्ची है तो मुझे बताया कि फिर ये रोने का मुकाम है कि हंसने का। जहालत की ये हद पड़ी और हम आराम फरमा रहे हैं। हमें अपनी इस कुरान की दौलत की शायद कोई वैल्यू ही नहीं पता। एक चांदी की अंगूठी हो उसकी कीमत हमें पता होती है, एक सोने की चूड़ी हो उसकी कीमत पता होती है, हमें इस कुरान की कीमत कहाँ पता है। हम इसी को लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर फितने और आजमाइशें आती हैं कि पता नहीं ये बंदा अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, इस्लाम ने जो चीज़ें जिसको दी हैं ना, अल्लाह को पता है वो सब ठीक है। शराइत मैंने आपको पहले सारी लिखा दी हैं। अब आप देखिए कि ये सब कुछ जो हुआ इन सारी चीजों के बाद, ऐसी औरतों से निकाह जायज कर दिया, लेकिन जबरदस्त नोट करें, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में जबर नहीं है। लौंडियों से ये फायदा उठाना एक रुख्सत है, हुक्म नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने ऐसी इजाजत दी, क्योंकि जिहाद और इसमें औरतों की गिरफ्तारी ऐसी चीज है जिससे कोई भी कौम बच नहीं सकती। ये होगा, हर दौर में ये होगा। आगे जाके ऐसे ऐसे हालात आए कि नबी सल्लम ने ऐसी चीजें सामने रखी कि ये मौका ही नहीं आया। यानी मसलन कहा कि औरतों को लाओ ही ना। देखिए ना, कुफार के लिए भी तो ये एक थ्रेट था ना कि देखो जंग हारेंगे तो हमारी बीवियां हमारे हाथों से चली जानी है। तो फिर इस डर से फिर बहुत कम औरतों को लाते थे, ये भी ध्यान में रखे। वहां मिस्टर एंड मिसेज इन्वाइटेड नहीं होते थे जंग के लिए कि विद फैमिली और बेगम और बच्चों के साथ आना है। वो फिर वही औरतें आती थी जो वाकई गुस्से में होती थी या जो किसी बदले और इंतकाम में आते थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज थी कि जिसको एक वक्ती तौर पे रखा और अल्लाह ताला ने बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को खत्म कर दिया। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज भी है, थोड़ी सी उस पर भी गौर कर लीजिए। और वो क्या है कि ये जो निकाह की हमने अब चार शर्तें पढ़ी हैं, आज इस्लाम में शादी एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बन गई है। कोई आज आपसे पूछे ना, ऐसे ही रात जाते पूछ ले शादी क्या होती है, आप अपने बच्चों से पूछिएगा 8-9 साल के, बेटा शादी क्या होती है। यंग बच्ची से पूछे बेटी शादी क्या होती है, तो शादी में चार चीजें होती हैं। पहले उसके लिए हॉल बुक होता है, फिर ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट होती है, ये दूसरी शर्त है। फिर फोटो सेशन की अपॉइंटमेंट होती है, ये तीसरी। और फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जिसको बुनियाद बनाकर लोग शादियों को अपने लिए वबाल का जरिया बनाते हैं। हमारी नजरों में शादी की ये शर्तें हैं। आप देखिए, हर मजहब में शादी होती है। आप कहते हैं हिंदू की भी शादी होती है हिंदू से, वो फूलों के हार डालते हैं। क्रिश्चियन की क्रिश्चियन से शादी होती है, वो चर्च में जाकर स्लीब के सामने जाकर कोई अंगूठी वगैरह पहनाते होंगे। मजूसियों की शादी होती है, आग के गिर्द फेरे लेते हैं, ये हिंदू भी लेते हैं। हर धर्म और हर मजहब में शादी का एक तरीका है। क्या वो हमारे तरीके मानते हैं? हिंदुओं को आप कहें कि आओ चल जरा मौलवी साहब को बुला के इस तरह निकाह के बोल बुलवा लो, हक मेहर मुकर्रर कर दो, कोई नहीं करता। हम उनके तरीके कैसे अपनाते हैं? इस्लाम के इस शादी के तरीके में ना तो गाने बाजे हैं, ना उसमें ढोल तमाशे हैं, ना मेहंदी है, ना पहला फेरा है, ना चौथा है, ना कुछ है। अल्लाह ने तो एक शादी को और इतनी डिटेल से, तो नमाज का तरीका नहीं है कुरान में। जो निकाह की इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, तो आज के बाद कभी भी आपको शादी का इनविटेशन आए ना, तो आप सोचा करें कि मुझे एक मजहबी त्यौहार का इनविटेशन आया। ये एक इबादत का तरीका है। और शादी करना, करवाना, शादी में अटेंड होना, वलीमा खाना, कोई नहीं कर सकता उसकी मदद करना, ये सब ऐन इबादत है। बट आज हमने जो इसमें रंग डंग रख दिए, उन्होंने इसको इबादत तो छोड़ दीजिए, बगावत बना दी है। दुआ करें उम्मत की आंखें खुल जाएं। मैं तो कहती हूँ इस वक्त वो हालात हो गए हैं कि सब शादी शादी खेल रहे हैं। मैंने सोचा मेरी कोई आगे सीरीज आई ना, मैंने टॉपिक ही शादी रखनी है, क्योंकि इस वक्त नासूर बन के चिपक गए हमारे मुआशरे को शादी। किसी की वैसी सुन रही थी आवाज़, बैठी हुई, तबीयत खराब, खांस के बुरा हाल, क्या हो गया बाजी, क्या बताएं, शादियां बड़ी हैं। उधर खुद गए, उधर मियाँ को भेजा, उधर बच्चों को भेजा, फिर भी खुद जाना पड़ा, और धुंधें पड़ रही हैं, और आधी आधी रात के फंक्शन, और आते हुए फजर हो गई, सुबह उठे तो नमाज कजा हो गई, और माजरतें कर ली, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उनको भेज दी है कि हम अब अगली शादी में ऐसे नहीं आ सकते। और आठ आठ दिन तक सिर्फ एक शादी की पेशियाँ होती हैं, आज मेहंदी, आज उबटन, आज लड़के वालों की, फिर लड़की वालों की, फिर शादी, फिर वलीमा, फिर उसके बाद मुखलावा, और फिर कहीं फिर जाकर एक मरहला पूरा होता है। इतनी देर अगर हम नमाज पढ़ें तो हमारी नमाज कितनी खूबसूरत हो जाए। तो इस्लाम इन चीज़ों को निकाह कहता है। और यकीन करें, इस्लाम में शादी जितनी आसान थी उतनी पक्की थी, आप जितनी मुश्किल हो गई ना उतनी कच्ची हो गई है। मानते हैं ये बात? बनती बाद में, टूटती पहले है। पहले इस बात पैदा करके हम शादियां करते हैं। यकीन करें, इन्हीं मौकों में ऐसे सबब बन जाते हैं कि जिससे घर टूट जाते हैं। कई तलाकों की बुनियाद शादी हालों में पड़ जाती है। वाकयात की जरूरत नहीं इस वक्त, लेकिन याद रखिए कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है। और यहां ये भी देखिए कि निकाह की अहमियत देखें। ओ हिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम, हलाल है इसके अलावा, यानी खानदान की बुनियादी तश्कील के लिए निकाह लाजमी है, फितरी चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह जैसी मौसर कोई चीज़ नहीं है। ये इब्ने माजा की रिवायत है। आप वल्ला ही लड़की लड़का के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडशिप कहें, लिविंग टुगेदर के बडीज कहें, हंसों का जोड़ा कहें, पर जो शोहर बीवी की मोहब्बत होती वो उनकी नहीं होती। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं और ये हकीकत है। देखिए ना, कोई कहाँ पला, कोई कहाँ भड़ा। शादी के बाद और बीवियाँ मर्दों पर जान देती हैं, मर्द बीवियों पर जान देते हैं। कोई बोंड ऐसा पक्का नहीं है जो ये भी है। फिर आप देखिए एक और चीज भी है कि हराम महदूद होता है और हलाल गैर महदूद है। मसलन कोई लड़की से ताल्लुक कायम करता है, गर्लफ्रेंड है, क्या हर वक्त अवेलेबल है? पहले तो वो सारे प्लान ढूंढेंगे ना, कहाँ मिलना है, कहाँ डेटिंग होगी, फिर भी इर्द गिर्द के हालात देखेंगे। एक हमारी स्टूडेंट है, तो उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को अपना वाक्य सुनाया था कि वो होटल का काम करते थे, उनका होटल था, जो भी जिस तरह के होते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया, तो बाद में जब बात की कि आपको पता है मैंने क्यों छोड़ा, कि एक लड़का लड़की हमारे पास आए थे कि हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए कमरा चाहिए, हम लेना चाहते हैं, यानी शादीशुदा नहीं थे। तो कहते हैं कि मेरे अंदर एक गैरत उभरी थी कि क्या ये मेरी इस जगह को जिना के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उस दिन मेरा दिल खट्टा हो गया, तो मैंने अपना काम को छोड़ दिया। अब ये उनके अमल था, हमें नहीं पता क्या बात थी, हकीकत थी, लेकिन जो बात मेरे तक पहुंची थी, यानी हराम महदूद होता है। कब, कितनी दफा हफ्ते में मिलेंगे, जबकि शौहर बीवी लामहदूद है, गैर मासूर है। उधर खौफ होगा पकड़े जाने का, इधर कोई खौफ नहीं है। उधर छुपाना पड़ता है, इधर कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये ओहिल्ला के लफ्ज में 100 बातें लिख ले आप, कदर नहीं हमें आती इस चीज की, लेकिन शौहर बीवी का ताल्लुक एवरी टाइम एनी वेयर ऑलवेज रेडी। आप देखिए खुशी का 24 घंटे आपके पास एक शख्स मौजूद है जो आपको खौफ से बचाता है। एक रात शौहर घर में ना, आपको बाहर के बिल्ली के भी कदम जो है वो चोर के कदम लगेंगे, पर्दा हिलेगा तो आपको लगेगा पीछे कोई छुपा हुआ है। तो ये ओहिल्ला की बरकतें हैं, ये अल्लाह का लुत्फ और करम है कि उसने ये इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि अंतब तक उबी अम्बाले को, माल का बीच में आना, ये है मर्द को जिम्मेदार बनाना। मर्द को पहले दिन से बताया जा रहा है कि तुमने अब इस औरत का टेक केयर करना है। ये जो मेहर है ना, ये औरत की कीमत नहीं है। लोग कहते हैं ना बीवी को बेच दिया, बेटी को बेचा, नहीं, ये टोकन है, टोकन ऑफ लव है, कि ये थोड़े से पैसे दे के मैं ये एहसास दिला रहा हूँ बेगम कि मैं सारी जिंदगी आपके ऊपर खर्च करना चाहता हूँ। और आप पढ़ते हैं ना पीछे सदुका कहते हैं, आगे भी आएगा इसी सूरत में सदुका का लफ्ज आएगा। सदुका क्या? सिद्क, सच्चाई, आई एम सिंसियर, आई एम नॉट फ्लर्टिंग यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। फिर आप देखिए चौथी चीज, मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, के पैसे दे के जिना भी कर सकता है कोई, बहुत सारी ऐसी कॉल गर्ल्स मिल जाएंगी, ऐसे बहुत सारे बदकार होंगे जो करना चाहती हैं। निकाह में पैसा आ रहा है, लेकिन ये बता दे कि ये पैसा सिर्फ उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक का नहीं है, बल्कि नस्ल पैदा करना। तो ये भी नोट करें, किसी मियां बीवी की शादी अगर इस शर्त पे होती है ना कि हम शादी तो करेंगे, हम बच्चे नहीं पैदा होने देंगे, ये भी जायज नहीं है। और आजकल ये भी एक नासूर बन गया, शादी से पहले प्लानिंग कर लेते हैं, 3 साल तो हमने बच्चा नहीं करना, पढ़ रहे हैं तो बच्चा नहीं पैदा करना है, गोया कि हम हर चीज अपने हाथ में रख के नाउज बिल्ला अल्लाह ताला के साथ रखते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए एक और चीज क्या है कि निकाह के लिए जो शरायत हैं, एक मर्द 4 बीवियों के होते हैं, इन सारी शर्तों के साथ भी निकाह नहीं कर सकता, ये भी लिख लें। यानी ये सारी शर्तें नाजायज कब हो जाती हैं एक मर्द के लिए, जब उसके पास ऑलरेडी 4 बीवियां मौजूद हों। ठीक है, 5वीं बीवी हराम है पहली के मौजूदगी में, चली गई पहली या खत नहीं है तो बेशक जितनी भी हो जाए लेकिन इकट्ठी नहीं कर सकता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनिकाही औरत का निकाह उसकी इजाजत के बगैर ना किया जाए, ना बाकिरा का निकाह किया जाए यहां तक कि इससे इजाजत ले ली जाए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसकी इजाजत कैसे होगी, यानी कि लड़कियां तो बोलती नहीं, ये पहले दौर की लड़कियां थी ना, अब तो लड़कियां ये बात सुन के हंसेंगी। हैं, मैंने तो सुना कि लड़कियां बापों से बैठ के मशवरे कर रही होती हैं कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। एक माँ ने शेयर किया कि मेरी बेटी अपने बाप यानी मियाँ से इसके ऐसी बातें कर रही कि मैं उसको खंगूरे मार रही हूँ कि ये कर क्या रही हो तुम, कि अबू मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे उसकी ये चीज़ें चाहिए वैसी चाहिए। और 15-16 साल की लड़की बाप को अब मशवरे दे रही है मेन्यू कार्ड कि मुझे इस तरह का शौहर चाहिए। तो कहा कि लड़कियां तो नहीं बोलती, तो आपने कहा कि उसकी रजा क्या है, खामोश हो जाना, बच्ची खामोश हो जाए तो समझे वो राजी है, ये मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है और वो क्या है, वला मुत्तखिदिल अखदान, छुपी यारियाँ। कितना बुरा समझते थे ये लफ्ज़ आज से कुछ साल पहले, छुपी यारी, यार कहते थे, इज्जत का चोर कहते थे इसको, आज इसके लिए कितने खूबसूरत नाम है, बॉयफ्रेंड, लिविंग टुगेदर, बडीज, इसकी इजाज़त नहीं है, याद रखिए। और निकाह छुपा के नहीं कर सकते, निकाह के मकासिद में एक चीज ऐलान भी है, ऐलान का लफ्ज आता है, ऐलान करो निकाह का, क्योंकि कल वो लड़की लड़का साथ हो तो कोई उनको देख कर गुनाहगार तो ना, और ये सोच करके ये दो क्यों साथ फिर रहे हैं। फिर इसी तरह से निकाह का ऐलान कैसे किया जाए, तो निसाई की रिवायत है, हलाल और हराम निकाह की तमीज आवाज और दफ से होती है। अरब लोगों में जब कोई निकाह होता था ना, तो वो दफ समझते ना, एक हाथ से वो एक थाली की तरह की चीज को करके वो आवाज लगाते, तो वो उस आवाज को सुन के ही समझ जाते थे लोग के निकाह हो रहा है। अब आज आप इस दफ को हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे करके नाचते फुदकते लड़के लड़कियों को नचा लें, जी ये शादी का ऐलान कर रहे हैं हम आज मेहंदी की रात पे, तो फिर ये आपकी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ने तो एक सिंपल सा यानी खुशी का इजहार हो, कुछ आवाज़ें वो लोग निकालते हैं अरब लोगों की, आप हा ही हु, उनकी आवाज़ों में एक टिपिकल चीज़ें होती हैं जिसको हमारे यहाँ लोक गाने या ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ें कहते हैं। तो ऐलान करना चाहिए, यानी उससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये दुरुस्त है। फिर इसी तरह एक सवाल ये कि निकाह एहसान कैसे है, ये जो हसन की बात हो रही है ना, यानी निकाह बचाओ कैसे है, तो आप देखिए मर्द और औरत बुराई से बच जाते हैं, शरीफ मर्द और औरत तो निकाह के बाद सोचते भी नहीं किसी दूसरी तरफ। ये अलग बात है कि मुआशरे का असर हो दिमाग पे और मीडिया और गंदी चीजें देखे इंसान, तो फिर अपने मर्द से तो कभी भी तस्कीन नहीं मिलेगी, और अपनी बीवी चाहे चांद का टुकड़ा होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। और वैसे भी आप देखिए कि महफूज इसलिए होते हैं कि वो खानदान इकट्ठा हो जाता है ना, बीवी मियाँ फिर बच्चे होंगे तो प्रोटेक्शन में ये चीजें आ जाती हैं। ये जो लफ्ज है ना मुसाफहीन, इसका रूट थोड़ा सा देख ले, सफहा से सीन फाहा, मुसाफहा कहते हैं नशेबी, तंग जगह में पानी गिराना, यानी अगर आप पानी बारिश का सोचे तो किसी नाले में गिरता है ना, उसके लिए लफ्ज है। यहां किनाया है शौहर बीवी के ताल्लुक की तरफ, कि सिर्फ शहवत का पानी निकालना नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ घर बसाने का इरादा हो। मुसाफहीन वो मर्द और औरतें जो मादा हयात को गिराते हैं, जबकि अल्लाह ने वो मादा नई नस्ल की पैदाइश और तरबियत और परवरिश के लिए पैदा की है। इशारा है इसमें वक्ती लज्जत हासिल करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए, एक तरफ निकाह है तो एक तरफ आजाद ताल्लुकात हैं, जरा इसका भी तोड़ बनाइए, लिखिए नोट्स में कॉलम बनाकर, एक तरफ लिखिए निकाह और दूसरी तरफ लिखिए आजाद शहवत रानी। और ये सोसाइटी में पलने वाले बच्चों को बताने के लिए बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं। देखा जाए तो अमल तो एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? पहली बात है कि निकाह एक मुआशरती माहदा होता है, एग्रीमेंट है। इसके बरक्स आज़ाद शहवत रानी में कोई माहदा नहीं होता, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ लड़की से निकाह के लिए अहले ख़ानदान को बकायदा पैगाम दिया जाता है, बाप को कहा जाता है या भाई को, राइट? इसके बरक्स आज़ाद शहवत रानी है तो इस मकसद के लिए ख़ानदान से ताल्लुक़ तोड़ना बाज़ दफ़ा पड़ता है। लड़की घर से भाग गई या लड़के ने ये कर दिया, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर तीसरा फ़र्क दोनों में क्या है कि निकाह की शरायत है, मसलन खुतबा निकाह होता है, वली की इजाज़त होती है, लड़की और लड़के का इजाबो कबूल होता है, यानी वो दोनों कबूल करते हैं, और चौथी चीज़ मेहर है, पांचवी चीज़ गवाहों की मौजूदगी है। इसके ऑपोजिट लिखिए, आज़ाद शहवत रानी में कोई शर्त नहीं है, चोरी छुपे के ताल्लुक में अल्लाह की याद का क्या काम, वली की जरूरत ही नहीं, लड़के लड़की को ताल्लुक कायम करने से पहले बाप को बुलाना पड़ता है। बाज़ सूरतों में दोनों की मर्जी होती है, बाज़ में जबर भी होता है, कोई एक फरीक राजी होता है दूसरा नहीं होता। फिर इसी तरह उधर मेहर है तो इधर बाज़ सूरतों में माल दिया जाता है, पैसे दे के ऐसी ख्वाहिशें पूरी की जाती हैं। इधर गवाहों की मौजूदगी है, उधर गवाहों से छुपते फिरते हैं कि कोई देख ना ले। फिर एक और चौथा फर्क, निकाह फितरी जज्बात की तस्कीन के लिए पाकीज़गी और तकद्दस की फिजा कायम करता है, प्योरिटी रहती है। इसके बरक्स आज़ाद ताल्लुकात फितरी जज्बात की तस्कीन के लिए वक्ती मेलान के तहत बेहयाई की फिजा कायम होती है, करप्शन फैलती इसी चीज़ के साथ है। आप तो लीगल राइट दे दिए ना, अब तो बच्चे के नाम से बाप का नाम ही निकाल दिया कॉलम्स में से, पता है आपको ये बात? यानी माओ को क्यों शर्मिंदा करो, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बच्चे को स्कूल दाखिल करवाते हुए उसके बाप का नाम नहीं लिखा हुआ। बस ऐसे भी केसेस हैं कि दो माओ के नाम लिखे हुए हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं और बाद में एक बच्चा अडॉप्ट करके उसको फिर पालती हैं, तो वो बच्चा था तो वो पूछते थे माए कौन है, कहते थे मेरी दो माए हैं, तो उन दो में से एक माँ में एक फादर है। मैंने एक खुद डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, वो कहती हैं ये दोनों हैं साथ रहती हैं, तो उसने कहा लेकिन दोनों फिर चूज करती हैं कि तुम हस्बैंड बनोगी कि मैं वाइफ, हालांकि हैं दोनों औरतें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी ये अब इतना आम हो गया कि हमारे बच्चों के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, आज से 5 साल बाद वो कहेंगे इट्स ओके, माँ बाप ज्यादा ही रिजिड हो गए। फिर आप देखिए पांचवा फर्क, निकाह का मकसद नई नस्ल की पैदाइश, परवरिश और तरबियत। इसके ऑपोजिट हराम ताल्लुक के बाद क्या होता है, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि बच्चा पैदा ना हो, और पैदा हो जाए तो जाया कर दिया जाए। फिर छठा फर्क देखिए कि निकाह नस्ल इंसानी की तरक्की का रास्ता है, जबकि आज़ाद शहवत रानी नस्ल इंसानी की तबाही का रास्ता है। कैसे इंसान इधर से उधर होता है। फिर सातवां फर्क, निकाह के लिए मर्द पर औरत की हिफाजत और किफालत की शरायत है, मर्द औरत और उसके बच्चों की माशी जिम्मेदारियों का कफील होता है। इसके ऑपोजिट आज़ाद ताल्लुक में मर्द औरत की हिफाजत को तोड़ता है, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, इसके बच्चे को नाम नहीं देता और इसके बच्चे की किफालत नहीं करता। और आखिरी बात करके आगे चलते हैं कि निकाह का रिश्ता सुकून का रिश्ता है, जबकि आज़ाद ताल्लुकात में सुकून नहीं बेसुकूनी और तबाही है। तो आज जिन सोसाइटीज़ में हम सांस ले रहे हैं वहाँ ये चीज़ें आम करने की ज़रूरत है, वरना याद रखिए कि लोग अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से बचाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि पीछे हमने मेहर की बहुत डिटेल्स पढ़ी थी ना, कि ये भी एक किस्म का अल्लाह ताला का औरतों को हक दिलाना है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अगर किसी आदमी ने किसी औरत से शादी की और उसके साथ ताल्लुक भी कर लिया तो इसे पूरा मेहर देना चाहिए, पूरा मेहर देना होगा। और अल्लाह सुबहाना ताला इन सारों में, वही ये मेहर की बातें पीछे बहुत डिटेल से हुई थी इसलिए मैं यहाँ इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं आपसे पूछती हूँ कि जितनी बात अभी तक हुई है क्या आप इसको पूरा समझ चुके हैं? अब आपसे कोई पूछे तो क्या पूरे शरह सदर के साथ इन सारी चीज़ों को क्लियरली जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बात आ रही है ना कि वक्ती निकाह नहीं कर सकते, निकाहे मुता, इसके बारे में एक हदीस सुन लीजिए। इब्ने मसूद कहते हैं, हम रसूलुल्लाह के हमरा जिहाद किया करते थे और हमारे साथ हमारी बीवियाँ ना थीं, और हमने कहा क्या हम खसी हो जाएं, हसीना हो जाएं, यानी अपने अंदर से ये ख्वाहिश निकलवा दें, तो आपने हमें इससे मना फरमाया और इस बात की इजाजत दी कि एक कपड़े या किसी भी चीज के बदले एक मुआयना मुद्दत तक किसी औरत से निकाह करें। ये बुखारी की रिवायत है। अब इसको सुन के एकदम लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते थे तो अब क्या है? तो आगे सुन लीजिए कि अबू जुमरा कहते हैं, हजरत इब्ने अब्बास से औरतों से मुता के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी इजाजत दी। फिर इसके एक गुलाम से पूछा तो उन्होंने कहा इसकी इजाजत सख्त मजबूरी या औरतों की कमी या ऐसी सूरतों में होगी। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि हाँ। ये बुखारी की रिवायत है। यानी एक वक्त ऐसा आया था मुसलमानों की हिस्ट्री में कि औरतों को मर्द अवेलेबल नहीं थे, मर्दों को औरतें अवेलेबल नहीं थी। ये भी वक्त आया क्योंकि सारे अभी नए नए इस्लाम में आ रहे थे। लेकिन अब ये निकाह मनसूख हो चुका है। अब क़यामत तक के लिए आपने फरमाया कि मुता हराम है। सुन लीजिए, हजरत अली से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने ग़ज़वे खैबर के मौके पे औरतों से मुता करने और पालतू गधों का गोश्त खाने से हराम फरमा दिया। बुखारी की रिवायत है। तो आपसे कोई पूछे, याद रखिए शिया लोग आज भी निकाह मुता को मानते हैं, सारी बेहयाई के दरवाजे इससे खुल जाएंगे। आप एक रात के लिए किसी से निकाह करें, अगले दिन तोड़ दें, फिर तो वो इस्लाम की सारी ये बुनियादें ही हिल जाएंगी। तो उसकी वजह ये कि खैबर की जंग जो 7 हिजरी में हुई थी, उस मौके पर इसको हराम कर दिया गया, जैसे वो नासिख और मनसूख के अंदर ये बात आती है। रबी बिन सुबरा कहते हैं अपने वालिद से रिवायत करके कि रसूलुल्लाह के साथ थे, आपने फरमाया लोगों मैंने तुम्हें औरतों से निकाह मुता की इजाजत दी थी और तहकीक अल्लाह ने इसे क्यामत तक के लिए हराम कर दी है, बस जिसके पास इनमें से कोई औरत हो तो उसे आजाद कर दे और इनसे जो कुछ तुमने इन्हें दिया है वो वापस ना ले। ये मुस्लिम की रिवायत है। हजरत उमर ने खुतबे के दौरान कहा कि रसूलुल्लाह ने मुता की हमें 3 मरतबा इजाजत दी फिर इसको हराम कर दिया। अल्लाह की कसम अब मुझे किसी भी शादीशुदा के निकाह मुता का इल्म हुआ तो मैं इसे पत्थरों के साथ रजम कर दूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे पास 4 ऐसे गवाह लाए जो ये शहादत दें कि रसूलुल्लाह ने इस निकाह को हराम करने के बाद फिर हलाल कर दिया था। बात समझ गए। इब्ने माजा की रिवायतें हैं ये 2 मुख्तलिफ जगह पे। और नासिरुद्दीन अल्बानी कहते हैं कि ये हदीस सरीह नस है कि निकाह मुता हमेशा के लिए हराम है, बस जो इसके जवाज का कायल है तो वो फतवों से धोखा ना खाए, जैसा कि शिया का मजहब है। ये बुक का नाम भी लिखा हुआ। तो बहरहाल देखिए कि जब दीन की हिकमत समझ आती है तो बात वाजे हो जाती है। अब यहाँ तक बात पूरी हो गई, यानी जिसको आप कह लें कि निकाह किससे करना किससे नहीं करना, लॉन्डी से करना, आम हालात में नहीं करना, मेरा ख्याल है कि जितना हमने सिंपल तरीके से इसको पढ़ा आपके लिए ये बात क्लियर है। अब आज इस मसले को इतना कंफ्यूज्ड क्यों किया गया, क्वेश्चन पैदा होता है। यानी दूसरे लफ्जों में कह लें कि आज के दौर में शादी के मौजू से वो सारी चीज़ें निकाल कर जो असल में शादी थी दूसरी चीज़ें क्यों डाल दी गई। बात वैसे तो उसकी 2 आयतों में अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दी है, आइए इसको पढ़ते हैं।